نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے بات کی ڈائری بنانے کی اور کیلنڈر کو استعمال کرنے کی اور اپنے وقت کا مختلف طریقے سے حساب کتاب رکھنے کی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا, ہمارے شیڈیولز ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, جو ہمارے اسکیڈولز ہوتے ہیں, کیا وہ پورے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اصل میں لوگ کچھ اردو میں ہم لوگ اس کو شیڈیول کہتے ہیں, لیکن امریکہ کے لوگ اس لفظ کو اسکیڈول پڑھتے ہیں. سیم سپیلنگ ہوتے ہیں ایس سی اے ڈی یو اے ایل کے ساتھ. تو آپ کچھ بھی لکھ لیں, شیڈیول لکھ لیں, اسکیڈول لکھ لیں, ہم جو سوچتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. کرنے کے جو کام ہوتے ہیں, جو ہمارے تھنگس ٹو ڈو, یہ تو ایک فیکٹ ہے, نیچرل بات ہے, ریئلٹی ہے کہ 100% پورے نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ اسکیڈول بناتے ہوئے بھی مینٹلی پریپیئر رہا کریں کہ میں 100% نہیں کر سکوں گی, لیکن یہ نہ ہو نا کہ 100% ہی نہ ہو. تو آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ چیزیں بہت کم وقت میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کو آپ یہ لکھ سکتے ہیں یا اپنے لیے یاد رکھنے کے لیے کہ ناممکن ٹارگٹ اپنے لیے بنا لیتے ہیں, جو کرنا ممکن ہی نہیں لیکن آپ اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. پھر دوسری ایک اور وجہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں ابھی تردد ہے, شک کا شکار ہے. جو لکھ چکے ہیں, جو اسکیڈول بنا چکے ہیں, وہ کر ہی نہیں پاتے, یا آپ کو شک ہے کہ مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. بالکل اسی طرح جیسے مہمان کے آنے میں شک ہو تو پھر ہم کھانا اس یقین کے ساتھ نہیں پکا پاتے جس طرح کہ ہمیں پکانا ہے. پھر ایک تیسری وجہ جو ہم خود اپنی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور وہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ترجیحات پر توجہ نہ دیتے ہوں, پرائیورٹیز نہ مقرر کرتے ہوں, بیکار کاموں میں وقت لگ جاتا ہو اور کارآمد چیزوں میں وقت نہ لگتا ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بر وقت فیصلہ نہ کر سکتے ہوں. یہ بھی ایک بہت لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں, ڈیسیژن پاور نہیں ہوتی ان میں, اور جس وقت میں کام کرنا ہوتا ہے اس وقت تک کبھی وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آج کیا پکے گا, آج کیا کروں, آج کدھر جاؤں, اس طرح کی بات ہے. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہمارے اسکیڈولس, جو ہمارے شیڈیولس ناکام ہوتے ہیں, اس کی کیا ہے کہ ہم ذاتی طور پر ڈسپلن نہیں ہوتے. ہمارے اندر ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے اور شدید دباؤ کا شکار رہتے ہیں, سٹریس میں چلے جاتے ہیں, ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے, کسی کام کو کرنے کی نیت یا کوشش کے باوجود نہ کرنا, وہ کیا ہے کہ ہم اس کام کو اپنے لیے ایک زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. کسی دوسرے نے ہمارے سر پہ ڈال دیا وہ اسکیڈول, ہم نہیں کرنا چاہتے, مشکل یا کوفت کا باعث بن جاتی ہے وہ چیز. آپ دیکھیے کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں, ہم نے جہاں جانا ہوتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ. جس دن آپ نے سوچا ہوتا ہے میں نے ضرور جانا ہے, اس دن آپ صبح اٹھ کے خود کو اتنی زحمت بھی نہیں دیتے یہ پوچھنے کی کہ میری طبیعت کیسی ہے. جس دن تھوڑی سی چوائس موجود ہو آپ صبح اٹھتے ہی پہلے خود سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے, پھر اندر سے جواب آتا ہے کہ نہیں حال خراب ہونے والا ہے, پھر آپ سوچتے سوچتے کبھی دیر کبھی سویر وہاں پہنچتے ہیں, کبھی بالکل نہیں پہنچتے. ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. لکھ لیں, کوئی خود کو دھوکہ نہ دے کہ میں مجبور ہوں. میری مجبوری ہمیشہ ایک ہی خاص موقع پہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک خاص ہی دن میری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ ایک خاص کام ہی کرنا میرے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ میں اس کام کو مشکل سمجھتی ہوں, کوفت سمجھتی ہوں. کوئی مرد اگر کسی جاب کو پسند نہیں کرتا نا, یقین کریں وہ تھوڑے دن بعد اس کو لے آف کر دیں گے. وہ کہے گا دیکھا مجھے لے آف کیا, کیوں کیا, یہ نہیں چاہ رہا تھا کرنا. جان کے سستی, ڈیلے, لیٹ جانا, جلدی آ جانا, وہاں کام پورا نہ کرنا. پھر ایک اور وجہ جو ہمارے شیڈیولز کے ناکام ہونے کی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے ہوں, جس کی وجہ سے اہم نوعیت کے کام ادھورے رہ جاتے ہوں. اس موضوع کو آپ دیکھ رہے ہیں ہر مضمون میں, یہ تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں آ رہا ہے کہ انکمپلیٹ چیزیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ ہمیں بعض بڑی اہم چیزوں سے دور کر دیتی ہیں. پھر ایک اور وجہ خوف بھی ہوتا ہے. ہمارے شیڈیولز کی ناکامی کی وجہ ہمارا خوف زدہ ہونا ہے، میں کر نہیں سکتی۔ آپ سوچیں کوئی شخص کنارے پہ کھڑا ہے سمندر کے اور موجوں سے خوف زدہ ہے، کبھی بھی نہیں وہ تیر سکے گا، تو خوف موجود ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ شیڈیولز کی ناکامی کی کہ آپ محض ماضی پر ہی رو رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہیں اور آج کچھ کر نہیں پا رہے۔ آپ کہتے ہیں میرے سے تو کبھی بھی نہیں ہوا، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، میں نے دعوت رکھ تو لی ہے، گھر میرے سے صاف ہونا کوئی نہیں۔ آپ اپنی ماضی کی تلخیوں کو لیتے ہیں، وہ دیکھو فلاں موقع پہ بھی نہیں میں نے کیا تھا، فلاں پہ بھی مشکل پڑ گئی تھی، اب تو کمزوریاں بھی اندر آ رہی ہیں، پہلے تو جوانی تھی اور بات تھی۔ اس طرح کی سوچیں، اندیشوں میں جینے والے لوگ کام نہیں کر پاتے۔ پھر اسی طرح ایک اور کام یہ ہے کہ آپ کے اندر عزم کی کمی تھی، آپ نے اس کام کو اپنے لیے لازم نہیں کیا تھا، یعنی آپ کے اندر کمٹمنٹ کی کمی تھی۔ آپ کہہ لیجئے اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بڑا آدمی کون بنتا ہے؟ وہی بنتا ہے جو خود کو پہچانے، اپنی خامیوں کو دور کرے، خوبیوں میں اضافہ کرنے کی مسلسل کوشش کرے۔ ہم بعض میں کہتے ہیں ہماری عمر نہیں رہی سیکھنے کی، دیکھیں اب 20 سال تو ہو گئے گھر چلاتے ہوئے، اب لو بھلا میں گھرداری سیکھوں، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ابھی شروع میں جب نے ہوم ورک کی بات کی ہے، میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جو خاص طور پہ جو اب اپنی زندگی کے اس دور میں کہ جہاں بچے بھی جوان ہو گئے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے، وہ صرف یہ سوچ کے ہوم ورک نہیں کریں گی ہمارے ساتھ کہ لو اب میں کروں۔ اور آپ، مجھے یقین ہے کہ میرے ان سارے بولے ہوئے جملوں کو سب سے زیادہ آپ میں سے وہ آزمائے گا جس نے ابھی زندگی کا نیا نیا آغاز کیا، کوئی ینگ لڑکی، کوئی بھی نئی شادی ہوئی، وہ ضرور سوچیں گے۔ لیکن جتنے بڑے ہوتے ہیں نا وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ ہر عورت کو ایک بہت بڑا گمان ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بہت اچھا چلا رہی ہوں، ہر ساس کو بھی یہ بہت بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں جیسا گھر چلاتی ہوں بہو نہیں چلا سکتی۔ اور بیٹی کے بارے میں ماں کبھی خوش ہوئی؟ میری ماں تو کبھی نہیں مجھ سے خوش ہوئی تھی جب تک میں اس کے پاس تھی، ان کو تو یہی لگتا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے آج بھی آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں پوچھیں، آپ کہیں گے انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، یہ تو مجھے باتیں ہی کرائیں گی، اور ڈر بھی دلاتے ہیں تو ساس کا۔ تو اس طرح بعض دفعہ ہم اپنی خامیوں کو دور کر کے خوبیوں میں اضافہ جب نہیں کرنا چاہتے نا، تو پھر ہم بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ پھر اس کی وجہ ایک اور رہتی ہے کہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال نہیں کرتے۔ منظم جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ وقت کو مینیج کرتے ہیں، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت معروف بادشاہ گزرا، صرف 5 سال کی مدت میں اس نے اتنے بہترین کام کیے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ سے ریلیونٹ، ملک کی ترقی، اصلاحی کام کیے۔ کہتے ہیں، معروف ہے اس کے بارے میں کہ اس شخص نے 5 سال میں جو کام کیے ان سب کو کرنے کے لیے 1 صدی چاہیے ہوتی ہے، 1 سینچری، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مین آف دی ورلڈ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ حضرت ابراہیم کون تھے؟ کان امتن، امت تھے۔ چلیں شیر شاہ سوری کو تو آپ شاید جانتے بھی نہ ہوں گے، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، جو کچھ وہ کر گئے بھلا کوئی 40, 50, 100 سال کی عمر میں کر پاتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ امت بن کے جیتے ہیں، وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے پیچھے کروڑوں سوگواران، دل روتے ہوئے، آنکھوں سے روتے ہوئے۔ ہم جاتے ہیں آج جائیں گے کل دوسرا دن، بچوں کو بھی صبر آئے گا، شوہر شادیاں کر لیں گے، ماں باپ ویسے ہی بےچارے دنیا سے جانے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہم مریں گے ہمیں کس نے یاد کرنا ہے؟ لیکن کچھ مرتے ہیں آپ دیکھیں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو بہترین طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو شیر شاہ سوری کی بات میں نے کی، تو انہوں نے اپنا ایک اسکیڈول بنایا ہوا تھا اور اپنے معاملات اور معمولات میں توازن رکھتے تھے۔ ایک لفظ ہوتا ہے معاملات، لکھ لیں، معاملات ڈیلنگ کو کہتے ہیں، سوشلائزنگ، لوگوں سے ملنا گھلنا، باتیں چیتیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا جا کے جڑا رہے ہیں، اس کا یہ کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں معمولات، معمول کہتے ہیں روٹین کو۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کے معاملات میں اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں کہ اپنے معمول یعنی اپنے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو لے کے اپنے اوپر سوچئے، اس وقت اس کلاس میں آنا ہمارا معمول ہے، آپ نے کہا کہ میں نے ادھر ہیلپ کرنی ہے، یہ آپ کا معمول ہے، میرا بھی یہ معمول ہے، روٹین ہے۔ اب کسی دوسرے معاملے میں میں کود پڑوں اور آپ کو پڑھانے نہ آؤں تو میں نے ظلم کیا، آپ کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ۔ چاہے میں اس وقت آپ لوگوں کو چھوڑ کر کسی 2 روٹھے وہ میں جا کے صلح کرا دوں، مثال دیتی ہوں، کوئی طلاق تک نوبت تھی، میں کو ہائے طلاق ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں کود پڑی جا کے اور میرے پاس پوری گارنٹی موجود ہے کہ میں صحیح اچھے ہی تو کام کر رہی ہوں. اللہ کے نبی نے تو صلح کرانے کا اتنا اجر لکھا, لیکن یاد رکھیے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. ایک غلط فیصلہ ہمیں اتنی دور لے جاتا ہے ہمارے مقصد سے, ہمارے اسکیجول سے, کہ ہم اس کا فکر نہیں کر سکتے. آپ صرف اس جملے کو رات کو سوتے وقت خود سے پوچھیں, آج معاملات میں پڑھ کے کتنی دفعہ میں نے اپنا معمول خراب کیا. اب اس کو آج کا بنا لیں بک مارک, یعنی معاملات اور معمولات میں توازن رکھنا ہے. ہم جب اپنی روٹین خراب کر کے یا اپنے فرض کے درجے کے کاموں کو چھوڑ کے نفل کی بھی نیکیاں کرتے رہیں, فائدہ کوئی نہیں. فرض نماز چھوڑ دیں اور آپ بیٹھ کے قرآن ہی پڑھتے رہیں, پڑھاتے ہی رہیں, میں پڑھاتی رہوں, اتنوں کو دیکھو فائدہ ہو رہا ہے, ظہر کا کیا ہے وہ تو عصر کے ساتھ پڑھ لوں گی, تو میرا یہ فیصلہ غلط فیصلہ تھا. کہتے تھے شیر شاہ سوری, بڑا آدمی وہ ہے جو اپنا سارا وقت ضروری کاموں میں صرف کرے. عام سی بات ہے, سارا وقت ضروری کاموں میں, یعنی غیر ضروری کو زندگی سے نکال دیں. ان کا اسکیجول آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کس طرح سے انہوں نے 24 گھنٹے کو بانٹا ہوا تھا. ان کی ایک ڈائری ملی جس کے اندر ان کا ڈویژن آف ٹائم لکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو 3 حصوں میں باندھا ہوا تھا. پہلا وقت کیا تھا ان کا, بعد از نصف شب بیداری, آدھی رات کے بعد یہ اٹھ جاتے تھے. یعنی جلدی جو لوگ سو جاتے ہیں پھر وہ راتوں کے آخری حصے میں اٹھ جاتے ہیں. سب سے پہلے فراغت, یعنی ٹوائلٹ یوز کرنا, غسل, نوافل, دعائیں, ذکر, اذکار, وظائف, یعنی پرسنل عبادت, یہ ان کا پہلا حصہ ہوتا تھا تہجد کے وقت کا. اس کے بعد والا جو وقت تھا ان کا, رات کا ہی آخری حصہ کوئی ہوگا, مختلف محکموں کے حسابات اور امور کا جائزہ لیا کرتے تھے. آخر اتنی بڑی کنگڈم کو چلانا کوئی آسان ہے؟ ہم سے تو چھوٹا سا گھر نہیں چلتا, چھوٹا سا اسکول نہیں چلتا, چھوٹا سا کوئی کاروبار نہیں چلتا, تو وہ تو اتنا کام. تو اس وقت سارے محکموں کی جو ان کے پاس فائلز آتی تھیں اس کو چیک کرتے تھے. پھر اس کے بعد والے وقت کو اگلے دن کے جو ضروری کام لکھنے ہوتے تھے اور ذمہ داریاں جو دوسروں کو دینی ہوتی تھی وہ نوٹ کرتے تھے. یعنی میں نے لوگوں سے کام کیسے کروانا ہے, کل کے میرے تھے امپورٹنٹ تھنگس کیا ہیں, اور میں نے کل لوگوں سے کام کیسے اور کیا کرانا ہے. یہ کرا کے پھر بالکل جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا تھا نا, اس وقت لکھا کرتے تھے کہ میرا کل کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا, آنے والے دن کے پروگرام کی ترتیب. اس کے بعد دوسرا حصہ جو ان کے اسکیجول کا تھا, نماز فجر اور اس کے بعد دوپہر تک, یعنی اب فجر سے لے کے دوپہر تک ان کا اسکیجول سنیے. پہلی چیز اس میں تھی وضو, بعد جماعت نماز, ذکر اور فکر, وظائف, پھر نماز اشراق, یعنی یہ جو گھنٹہ ہے یہ ان کا اللہ کے لیے تھا. اس دوران مختلف ذمہ داران حکومت سے ملاقاتیں جو اس وقت حاضر ہوتے, یعنی ان کی میٹنگز اس وقت شروع ہو جاتی تھی. لوگوں کو انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی کہ فجر کے بعد کے وقت میں اگر ان کو اپنے کام پہ جانا ہے, اس سے پہلے کا وقت ہے, کوئی میٹنگ کرنی, کوئی ملاقات کرنی, آج کی زبان میں آپ کہہ لیں فون کالز کرنی کرانی, تو وہ اس وقت کرتے تھے. اس کے بعد والے وقت میں لوگوں کی ضروریات معلوم کرتے اور ان کو صدقہ دیتے, یعنی غریبوں کی مدد کرنے نکلتے تھے. تمہیں کوئی ضرورت ہے آج نکلے ہو, آج یہ, اور جس کی جتنی ضرورت ہوتی اتنا اس پہ صدقہ کرتے. پھر اس کے بعد کے وقت کو اب ذہن میں آ رہا ہے نا, 10-11 بجے کا وقت ہو گیا ہوگا, لوگوں کے مقدمات کی طرف توجہ کرتے, فریادیں سنتے اور ان کی حاجتیں پوری کرتے, یعنی کورٹ چلتی تھی ان کی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان عروج میں تھے تو حکمران ہی اصل میں قاضی ہوا کرتے تھے, وہ خود ہی فیصلے کر لیتے تھے. بیچ میں کئی قسم کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں جب دو چیزیں کسی ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد والے وقت میں جو تقریباً 11-12 کا وقت قریب کا بنتا ہے, فوج اور اس کے ہتھیاروں اور تیاریوں کا معائنہ کرتے تھے, فوج کو کیسے کیا دینے ہیں, ویپنز کیا دینے ہیں, وہ دیتے. پھر اس کے بعد کا وقت جو ہوتا تھا وہ فوج میں بھرتی ہونے والے لوگوں کے انٹرویوز کیا کرتے تھے. ہم تو سنتے ہوئے نہیں تک رہے, ہم نے کہا ہے اتنا کچھ, ہم کہتے ہیں اتنے تو کام ہیں, کیا کریں, ممکن نہیں, پاسیبل نہیں, میرے لیے تو میرے تو یہ بس میں نہیں, ٹو مینی تھنگس, ٹو مینی تھنگس. کیسے ٹو مینی تھنگس, آپ اپنے باڈی کو تو دیکھیں, 360 جوڑ کام کر رہے ہیں ایک وقت میں, دل دھڑک رہا ہے, کتنے خون کے قطرے ہمارے جسم میں ہیں, وہ حرکت میں ہیں, کتنے سیلز ہیں. ہم جو سب سے بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں نا, وہ خود پہ رحم کھا کے کرتے ہیں. آج میں اور آپ بیٹھ کے رحم کھا لیں نا اپنے اوپر, چلے مجھے چھوڑیں, آپ رحم کھا لیں نا کہ چھٹیاں لوگوں کی اور آج ہم آ کے بیٹھ گئے. ہائے کیا نصیب ہمارا, क्या क्या करें, तो आप देखिए कि आपकी एफिशिएंसी सारी कम हो जाएगी, छोटे छोटे काम। फिर उसके बाद जो जोहर से जो करीब का वक्त होता था ना, हर रोज़ की आमदनी और मालियत को देखते, यानी अकाउंट्स को देखते कि क्या चल रहा है, क्या पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। फिर जोहर से बिल्कुल जो पहले का वक्त था, उस दिन आप जिन लोगों को दूसरे मुल्कों में सफ़ीर बना के भेजा होता था ना, एम्बेसडर्स, और जो बड़े अहम लोग होते थे इनके मुलाकातों में, इनके लोगों में, उनसे मिलते, यानी बड़ी एक प्रोटोकॉल वाली आप कह लें मीटिंग करते, फिर उनकी दरख्वास्तें सुनते और फिर उन हुक्म लिखवाते। इसके बाद फिर इनका तीसरा स्केड्यूल शुरू होता था, दोपहर के खाना से लेकर फिर आखिर तक का वक्त। उसमें सबसे पहले नमाज जोहर की, फिर खाने पर अपने साथ उलमा और शेयूख को बुलाते, यानी खाना भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे बच्चा, लेकिन अपने पास लोगों को बुलाते जो खाने के दौरान इनसे इल्मी बातें करते, फतवे पूछते, करते कराते। फिर इसके बाद कैलूला फरमाते, दोपहर का जो वक्त है, और कुछ वक्त उसके बीच में ज़ाती कामों के लिए रखते जो भी किसी इंसान के होते हैं। और उसके बाद नमाज असर बाजमात नमा अदा करते और कुरान पाक की तिलावत करते। इनका दिन ख़त्म हो गया असर पे, असर से लेके ईशा तक का वक्त अपने घर, बीवी, बच्चे, खाना पीना। अब ज़रा हम सोचें कैसे लोग काम कर लेते हैं। हमें अपने अब ज़रा इसके साथ अपने ज़रा चंद लोग शेयर करें कि इस स्केड्यूल को सुनकर आपको अपने साथ मैच करते हुए कैसा लगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि मैं ज़्यादा बिजी हूँ कि ये लोग ज़्यादा बिजी थे। जी कौन खुद ही शेयर करना चाहे, नहीं तो फिर मुझे ही कहना पड़ेगा। कुछ महसूस किया आपने इसको सुन के? मकसद है ही कोई नहीं तो ज़ाया ही करेंगे ना, यानी हमारी 24 खिड़कियों में से आधी से ज़्यादा खाली जाती हैं शाम को। जी रेशम, आप इसको सुनते हुए क्या महसूस कर रहे थे? आपने ये तो नहीं सोचा हाँ असल मसला ये कि ये मर्द थे ना, औरत नहीं थे? हमें पता ही नहीं होता, यकीन करें नहीं पता होता। आप घंटों के बजाय मिनटों पर आ जाएँ, मिनट्स को छोड़ के सेकेंड्स पे आ जाएं। बाज़ दफ़ा हैरत होती है कि इतना वक्त है, जैसे कभी आप लोगों को बीच में स्ट्रेच देते हैं ना, तो आपको तो नहीं पता चलता होगा 3-5 मिनट हैं, 5 का कहते हैं, 3-4 के बाद लब्बे एक प्ले होता है। यकीन करें हम लोग अगर यहाँ बैठ के आपका इंतज़ार करें तो मैं उस वक्त भी सोचती हूँ अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा वक्त, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे होते, आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन आप रिलैक्स हो रहे होते हैं। जी आप शमा, हम होते हम कहते हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। जी ये क्या एक फ़ौज की बात कर रहे हैं, कुरान हम कुरान क्यों पढ़ें, लो जी हम इतने नेकियों के काम कर रहे हैं। आप सब ने एक चीज़ फील की है कि नहीं, आपको पता है ये बरकत किस चीज़ की है? सुन्नत के साथ सुबह शाम हो रही थी। आप यकीन करें एक दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी सुन्नत पर ले आएँ, मारें बांधें खुद को, और ख़ास तौर पर जिनके बच्चे भी छोटे हैं। मैं सोचती हूँ कि जिस चीज़ पे इंसान को कभी मलाल होता है ना, वो इस पे होता है कि मैंने अपना बचपन क्यों ज़ाया किया, मैंने उसकी आदतें अपनी ठीक क्यों नहीं की। अगर बचपन से आप बच्चों को, आपका बच्चा छोटा है, आपका 1 साल का है, 4 का है, आप उसको फजर के करीब उठा दें, करें हिम्मत की, और आपको पता है कि छोटा बच्चा उठता है, माएँ खुद इसकी गवाही देती हैं, छोटा बच्चा 40 डेज़ में है, उसके बाद वो फजर से पहले यूँ उठ जाता है, तहज्जुद पर रोएगा, माँ कहती है लो फिर उठ गया, वो समय आपको उठा रहा है, उसके अंदर उसको उठा रहा है, उस वक्त तक कभी उसकी फितरत मैच कर रही है अल्लाह के कवानीन से। एक दिन पूरा इस तरह गुजारे, अगर आपको घरों से इजाज़त मिले और कोई मुमकिन हो तो हम 24 घंटे एक वर्कशॉप करें, जागना और सोना सुन्नत के मुताबिक, करना चाहते हैं? यकीन करें मैं इनकी जब ये पढ़ रही थी असर के बाद इनके घर के काम, तो मैं हालांकि हम अब देखिए इनको पढ़ने के बाद लगता है हमारी कोई मसरूफियत, तो मुझे तो अपनी कोई नहीं लग रही। जब ज़्यादा वक्त घर से मैं बाहर गुजार के आती हूँ, जो भी मेरे घर में हो मैं उसको वक्त देना पसंद करती हूँ। ज़्यादा देर के लिए कहीं जाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ जो साथ होते हैं, देखिए हम इंसान हैं, हमारे दिलों में अगर दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं होगी ना तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आप मिसाल एक आम फैमिली में कौन कौन होता है घरों में, शोहर बीवी तो होता ही है, आप जॉइंट फैमिली में आपके पास कोई नंद हो सकती है, किसी के पास कोई देवरा नहीं है, कुछ है। आप बिल्कुल अपना स्केड्यूल बनाएं, हर चीज़ का स्केड्यूल, किस को टाइम कितना देना है। अच्छा आज तो अब सुबह निकल रही हूँ, मैंने तो रात 10 बजे आना है, क्योंकि आज तो पहले क्लास है, फिर मीटिंग है, फिर मोस जाना है, फिर मोस से आना है, चलो ऐसा करती हूँ अब 10 बजे आऊँगी तो बहुत सारे सोएंगे, आप सुबह नाश्ते का कप चाय का लेके पास बैठ दें, हम मिलके बैठते हैं थोड़ी देर बात कर लें। वो कमी उसको पहले ही लग जाए। और अगर आप सुबह सोते में गई, अगले बंदे आपकी नन सोती रही, आपकी सास या कोई भी, आप जब वापस आई तो वो फिर स्वामी, तो अगले दिन फिर आप चली गई, वो तो हाँ जी आप तो अब दिखते ही नहीं, आपके क्या करें, पढ़ाकू हो गए, पढ़ने पढ़ाने वाले हो गए। इस तरह बाज़ दफ़ा मियाओं को हम इग्नोर कर देते हैं कई चीज़ों में। तो हमेशा जहन में रखें, कभी किसी को खाने की ज़रूरत होती है उसको खाना खिला के आप टाइम दिखाएं, किसी को सिर्फ आपसे बैठ के बातें करनी है, आप कहें कि अच्छा हम मैं आ रही हूँ, हम बैठ के बातें करते हैं, खाना क्या करना, वो स्नैक्स खा लेते हैं, आ जाए हम वो सीरियल दूध खा लेते हैं, कंपनी दें, बात करें। इंसान जो होते हैं ना भूखे होते हैं लोगों के, हम अपनों को प्यार की आधा घंटा आधा, आप हर घर के बंदे का टाइम उसके हिसाब से दे दें। छोटे बच्चे तो लेते ही हैं टाइम, बड़े के भी लेते हैं, मियाँ का भी टाइम सेट कर दें। यकीन करें, जिसको मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ कि अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड मीन है कि जिसको आप डिवाइड ना कर सके, अटेंशन मीन तवज्जो। आप अपने घर के एक एक फर्द को ऐसी तवज्जो जिसमें ना तो आपका कोई मुफाद है, ना कोई मुतालबा है, ना कोई लालच है, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए मैं और आप, दैट्स इट, चले आए बाहर आइसक्रीम खा के आते हैं 5 मिनट। यकीन करें कि आधा घंटा आप शौहर को दे दें, अनअटेंडेड तवज्जो दे दें, वो बाकी 23.5 घंटे आपको नहीं पूछेंगे। वो भी कोई इतने फारिग नहीं है कि हर वक्त आपके सर पे सवार रहे, उन्होंने भी कई काम पाले हुए हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, 5 साल का, 10 साल का, 15 का, जितना भी है, मैं कहती हूँ 25 साल का आपका बेटा है, आ मेरा बेटा, उसको लें, उसको गोद में बिठाएं, उसका सर मलें, ज़रा उसके बालों को हिलाएं जुलाएं, क्या करते हैं उसका, कभी नाक मरोड़ें, कभी उसके कानों को मरोड़ें, करके देखें, वो आपके सामने यकीन करें 1 साल का बच्चा बनेगा, 10 से 15 मिनट, आ मेरा लाडू, चल पीछे भाग अब ते, इधर आ मेरे दूसरे की बारी है। आप सिर्फ ये करके देखें, आप दिल मोह लेंगे। लोग क्यों हमारे दीन से तंग आते हैं, कभी सोचा आपने? ये दीन की खैर घरों में जाएगी, ये हमारी नेकियों की खैर उनके जाएगी, इसकी वजह क्या है? हम अग्रेसिव हो जाते हैं। मैं नहीं मानती, हालांकि मैं खुद भी औरत हूँ, लेकिन मैं ये मानने को कभी तैयार नहीं होती कि हमारे इस दीन दुनिया के कामों से हमारे घर वाले नहीं। अगर तो इतने ही बेदीन है ना, तो वो तो मामला फिर कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, फिर लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं कि जो आपको घर वाले नमाज ही नहीं पढ़ने देते, या आपके आपको नेकी में तवज्जो नहीं देते, या आपको गुनाहों पर मजबूर करते हैं, वो तो फिर मिसमैच था रिश्ता, वो तो होना ही नहीं था चाहिए। लेकिन अगर है तो बैलेंस तरीके से निभाइए जी। इन सारी बातों के बाद अब आप क्या सोच रही हैं इधर से? किरण, आप क्या सोच रही हैं? स्माइल, लाइट मूडेड, कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका दिन? हाँ, बच्चे को प्यार से देखें, आओ मेरा बच्चा। और मुझे सब चीज़ों के पीछे ऐसे लगता है कि आपके अंदर पहले मोहब्बत का समंदर उबले, यानी जितना मोहब्बत दिलों को जीतती है ना, नफ़रत नहीं जीतती, हक मांगने वालों को कभी नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं आपकी कुरान की ज़िंदगी, आपके ये स्केड्यूल खुशी से चले। एक डोर कटती है तो यूं बंदा गिर के पड़ता है कि अल्लाह की बना, कि रोज़ वॉक करनी आसान है लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो मुश्किल है, और हफ्ते में एक दिन करें कि आज ही सारी कर लें, उस दिन ही हाँप के आ जाएंगे, टांगों में खलियाँ पड़ जाएंगी। काम रोज़ करने आसान है, हम दीन को 1 साल 2 साल पर नहीं मुहित कर सकते। हम अपनी नमाजें पढ़ लें सारी इकट्ठी अल्लाह से, कि अल्लाह ताला अभी फारिग हूँ, मैं अगली भी अगले हफ्ते की नमाजें इकट्ठी ना पढ़ लूँ क्योंकि आगे शादी कोई आ रही है तो मैंने बिज़ी होना है, नहीं पढ़ सकेंगे। तो लिहाजा प्लानिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, हमारे प्लान्स ही अच्छे होते हैं और प्लान ही बुरे होते हैं। एक अमेरिका में एक क्लब है, तो बहुत वो लोगों को लाइफ मैनेजमेंट की स्किल सिखाते हैं, तो उन्होंने अपने मेम्बर से एक अहदनामा लिया हुआ है, अहदनामा समझते हैं, प्लेज कह लें जिसको, कि जिसमें चंद पॉइंट्स है वो भी आपकी सहूलत के लिए लिखाती हूँ, हम भी आपसे ले लेंगे कोई अगर अहदनामा, अगर आप उसको ले के हमें ही ना छोड़ के दे दें, कि अब आप ही लिख के रख लें, हमें तो पता ही नहीं था ये घर भी लेके जाना है, हैं बस, इस तरह के भोले लोग भी तो होते हैं ना। तो वो लोगों से, यानी आप देखिए आप कैसे सिखाएं, अब मैं आपको ये कोर्स करा रही हूँ, मैं कैसे सिखाऊँ जब तक आप साथ हिम्मत नहीं करेंगे? दो की कोशिश होती है तो एक काम होता है ना, बच्चा दुनिया में आता है तो माँ की भी कोशिश होती है, बच्चे की भी होती है, एक खाली माँ भी नहीं कर सकती कोशिश और बच्चा भी नहीं। तो ये लोगों को जीना सिखाते हैं, और ये जितने मुल्कों में हम रहते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज, इधर तो यकीन करें ये पूरा फन है, लोग $100 एक घंटे के लेते हैं सिर्फ बात सुनने के, कि आपका प्रॉब्लम क्या है, वो कह मैं डिप्रेस रहती हूँ, अच्छा कोई बात नहीं है, फिर वो इस तरह के टिप्स देते हैं। तो वो एक क्लब वालों से जो पहली टिप लेते हैं, वो कहते हैं कि ये अहद करो, यानी अब जितनी बातें ना, ये अहदनामा है, क्या अहदनामा? नंबर एक, मैं आज के दिन को सिर्फ आज के तौर पर इस्तेमाल करूँगा, आज का दिन सिर्फ आज के लिए करूँगा और पूरी ज़िंदगी के मसाइल सिर्फ आज ही हल करने की कोशिश नहीं करूँगा। इतनी गोल्डन सेइंग है ना, अगर आप इसको समझें, मैं अपने लफ्ज़ों में दोहरा देती हूँ, आज सिर्फ आज ही के काम करूँगी, अपनी सारी ज़िंदगी के अगले मसाइल पकड़ के आज मैं नहीं डिस्कस करूँगी। आज आज के मसले, कल देखेंगे, कल जो होगा वो कल की बात है, सारे मसले मैं आज नहीं हल कर सकती, लिहाजा पहले मैं आज के हल कर लूँ। बाद लोग बड़े बड़े सेमिनार बुलाते हैं, आज हमारे मुल्कों में यही तो हो रहा है, बहसियत कौमियत यही हो रहा है, बड़े बड़े मसले डिस्कस करने में अपने डेली डे टू डे लाइफ के मसले हम हल नहीं कर पाते। फिर दूसरा अहदनामे में वो जो पॉइंट लिखवाते हैं लोगों से, वो क्या, आज मैं अपने आप को खुश रखूँगा। यानी आप सुबह उठ के अपने आप से यह अहदनामा करें और ये आप लिख वेबसाइट पे लिख के लगाएं, ये भी आपका होमवर्क है। ये जो पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, इससे अच्छे भी आप लिख सकते हैं, इससे कम, इसमें से कुछ निकालना चाहे निकालें, लेकिन सब चीज़ें कमिटमेंट। नंबर एक, पहली, मैं सिर्फ आज के लिए जीऊँगी, हाँ, सारे मसले आज ही नहीं डिस्कस करूँगी। जब मसला मेरा कहते बच्ची बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता ढूंढना, वो अभी हुई नहीं, वो कितनी अभी 10 साल की है, वो अभी तो 2 साल रह गए इस मसले में, मियाँ बीबी ने गम दिल को लगाया हुआ। अच्छा ऐसा करें, आप एक्स्ट्रा जॉब कर लें, आप बच्ची बड़ी हो रही है, फिर उसकी शादी करनी है, छोड़ें इन मसलों को, आज में जिए। दूसरी बात, मैं आज अपने आप को खुश रखूँगी, आज मैंने कोई गम नहीं पालना, रिलैक्स इंजॉयमेंट कीजिए। फिर बार बार खुद को आप याद कराएंगी ना, आप बच्चों को भी ये बात कह दें कि बेटा आज मैंने खुश रहना, तुम कहीं चले जाओ, और मियाँ को कहें आप खुदा के लिए चले दें, आज ज़रा मुझे खुश रहने दें। नहीं, घर में घर वालों के साथ खुश रहना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तीसरा अहदनामा जो हमारा अपने आप से होना चाहिए, लोग तो मैंने सुना है कब्र में अहदनामा रखते हैं मरने वाले के, तो ये ज़िंदगी के अहदनामे जो हैं ये इंसान को ज़िंदगी में खुश रखते हैं। देखिए, खुश हम कब रहेंगे, जब अल्लाह की रज़ा को राज़ी हो जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि ये दुनिया हमारी मर्ज़ी की बने, हमारे साथ रहने वाला हर बंदा टेलर मेड हमारे साथ चले, ये नहीं होगा। लेकिन मैंने खुश रहना, मैं ये बात कह रही हूँ तो मेरी नज़र में एक खातून है, यकीन करें, जिसको आप सदमे कह सकते हैं ना, दुख, अनयूजुअल कंडीशन ज़िंदगी में किसी को जो जो आ सकती हैं, मेरा लग 90% सारी उनके साथ थी। जिसको फी ज़माना आप कह लें कि दुखी तरीन बंदा, और जब हम उनको मिलते थे ना, तो वो जिसको कहते हैं ना कह कहा लगा कर इस तरह हंसती थी ना कि पूरी चारपाई हिलती थी, कहती थी लाओ खाना खाते हैं, छोड़ो जो होगा। इतनी माशाल्लाह सेहत भी मोटी हुई ताज़ी, और खाने खिलाने पिलाने वाली। जब बैठ के हम कभी, हमारे साथ बहुत क्लोज था उनका, दुख सुख भी होता था, खुद ही पहले रो रही होती थी कोई बात सुना के, जब बात सुना फिर ज़ोर से कह कर लगाती थी। तीसरी चीज़ आज के अहदनामे में जो आपने लिखनी है, कि मैं अपने जहन से कोई मुफीद काम कराऊंगी। आप कह लें इसको कि मैं अपनी दिमागी कुव्वतों को मजबूत करने की कोशिश करूंगी, कोई मुफीद चीज़ सीखूंगी या कोई ऐसी चीज़ पढ़ूंगी जिससे मेरा जहन उभरे। यानी आप ये कह लें जहनी काम करूंगी। जहनी काम करने का बहुत बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है, कि जहन से गम गिले गुस्से ख़त्म हो जाते हैं। आप ज़रा कोई बड़ा ऐसा काम करें जिसमें आपका दिमाग लगता है, मसलन जहनी काम आपके लिए, मेरे लिए रिलीजियसली ये भी हो सकता है कि मैं आज 3 आयतें याद करूँगी कुरान की, हाँ आज मैं 2-3 आयतें सामने इस बारे की रख के इस पर गौर व फिक्र करूँगी। यानी कुछ वक्त आपने मेंटल एक्टिविटी को देना है। और आपको पता है कि जितना हम जो हिस्सा जिस्म का इस्तेमाल करते हैं ना, उतना वहाँ खून जो है वो तेज़ी से काम करता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होगा ना, तो आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा। मैंने शायद कभी मिसाल किसी को पहले दी हो कि एक साथी थी मेरे पास, जब मैंने शुरू की क्लास, शुरू की दिनों की बात है, पाकिस्तान की ये बात है, तो अच्छी खासी उम्र की थी, जैसे आम औरतें होती हैं, तो बड़ी सैड सी, कुछ लोगों को देख के चेहरों से लगता ना ये दुखी लोग हैं, उस तरह का उनका फेस था। खैर क्लास में आई, फिर उन्होंने ज्वाइन की, फिर बाद में पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, दिमाग में रसौली है उनके, और डॉक्टर बहुत परेशान है। तो खीर ये अपने आप को वहाँ से ज़रा निकाल के डिप्रेशन की वजह से क्लास में आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये आती रहीं। अच्छा, चेहरे पे एक इत्मीनान तो कुरान पढ़ने वालों के वैसे ही दिखता है, अल्लाह की ये एक ख़ास अनायत होती है। तो उनको भी देख के बहुत लगा। कुछ अरसे के बाद फिर एक दफ़ा उन्होंने मेरे से बैठ के मीटिंग की तो कहने लगी कि मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी। और वो क्या कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बिल्कुल अपनी बीमारी के इसी स्टेज पे थी कि डॉक्टर मुझे हर मीटिंग में ये कहता था कि तुम्हारी गिल्टी जो है ना दिमाग की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तुम जब मेरे पास आती हो उससे ज़्यादा तुम्हारी साइज़ बड़ा होता है और अगर इसी रफ्तार से ये रहा तो ये ख़तरनाक है। लेकिन अब डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट से मुझे ये पता चला है, वो कहता है कि तुम्हारी गिल्टी बढ़ नहीं रही, क्या वजह, तुम क्या करती हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मैंने इस तरह एक कोर्स शुरू कर लिया और मैं उसमें बिज़ी होती हूँ। डॉक्टर ने कहा यही वजह कि पहले तुम जब सोचती हो ना अपनी बीमारी तो तुम्हारे सारे जिस्म का खून दिमाग में आता है। और ये सच है, जब हम सोचते हैं ना तो हमारा बात लोग क्यों एकदम कोई शौक से खबर लगती है तो बेहोश हो जाते हैं, वो सारा ब्लड जो है वो आगे चला जाता है और जिस्म काम करना छोड़ता है। तो डॉक्टर ने इनको बताया कि पहले आप फारिग ज़हन से थी ना, हर वक्त सोचती रहती थी अपने बारे में, बीमारी के बारे में। अब आप सोचती नहीं है तो ब्रेन को ब्लड कम मिलता है, तो कम मिलता है तो वो आपकी गिल्टी नहीं बढ़ रही। तो अब कह रही कि वो ठहर गई। अब वो चेकअप आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हफ्ते वाला चेकअप 15 दिन पर गया, फिर महीने पर गया और डॉक्टर कहते हैं कि अब ये हो रहा है। तो मैं कुछ साल पहले अमेरिका से जब गई तो मुझे मिली तो कहेंगे आप यकीन करेंगे एक बात, क्या कहती, मेरी गिल्टी ख़त्म हो गई है दिमाग की। मैंने नहीं आज तक ऐसा कोई केस सुना था अपनी ज़िंदगी में कि ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन कैंसर, और वो गिल्टी ख़त्म हो। इतना उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह ऐसा सदका जारिया हर एक को बनाए। खुद पढ़ा, फिर अब वो जेलों में काम कर रही, फिर क्लासेस ले रही, कहीं कुछ कहीं कुछ, सुबह इधर शाम इधर पढ़ती पढ़ाती। ये ख्वाहिश कभी कम थोड़ी होती है। उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ किया, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी दूर कर दी। तो जहन को मसरूफ़ काम में डालें। किसी वक्त किसी की को बात आपका खून जला दे, हम कहते हैं ना सर से पाँव में आग लग गई, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा, और अगर हो तो आज से इस बात को पल्ले बांध ले। फौरन उस वक्त आप अपने बुक शेल्फ में कोई मुश्किल सी किताब उर्दू की पकड़ें, कोई अल्लामा इकबाल की शायरी पकड़ लें, कोई तफसीर की चीज़ पकड़े, जो आपको ज़रा आम दिनों में उठे उसको लेके सोफे पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। ये करके देखें, आपको पता चलेगा गम कैसे दूर होते हैं। तो जहन को बेकार चीज़ों की बजाय कारामत चीज़ों में लेके आएं। चौथा अहदनामा, और वो क्या कि मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, ना कि दूसरों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एडजस्ट करूँ। यानी मैंने एडजस्ट करना है दूसरों को अपने मुताबिक, ना कि मैं उनके मुताबिक हो जाऊं। आप यकीन करके देखें, इस बात पे यकीन रखें कि जो मैं लाइफस्टाइल या जो ज़िंदगी का मामला मैंने पसंद कर लिया है वो ठीक है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को इसके अंदर लाना है, ना कि दूसरों के रंग में रंगे जाना है। ख़ास तौर पर जब हम दीन पे आते हैं ना, कुरान से और शऊर से ज़िंदगी आती है तो लोग तो हमें यूँ देखते हैं, मैं कहती हूँ यूँ बंदा फबक के ऊपर चला जाता है दीन से, अगर हम अपने आप को मजबूत ना रखें। हल्की सी रस्सी ढीली करें, आप यूँ जाके गिरेंगे कि आपको याद ही नहीं आएगा कि आप कल कौन थी। एक लड़की मेरे जहन में आ जाती है इन बातों को करते हुए। कोर्स कुरान का करके वो अमेरिका आई शादी के बाद, खैर हेल्प करने लग गई वहाँ आके, कुछ इंग्लिश का ग्रुप लेने लगी, अच्छी लड़की थी। फिर उसके बाद एकदम उसने आना छोड़ दिया और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई, ना वो रंग ना वो ढंग। किसी महफिल ऐसी में दिखी कि अपना हाल हुलिया छुपाते हुए पीछे हो गई, यानी एम्बेरस फील कर रही थी। फिर एक मौका आया कि वो फूट फूट के रोई, कहती है मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती क्या लगती है, जब मैं अमेरिका आई थी तो मैंने इस ख्याल के तहत कि मेरा शौहर खुश हो जाए मैंने निकाब छोड़ा था। पाकिस्तान में निकाब करती थी, कोर्स कुरान का पूरा किया हुआ था उसने, प्यारी सी लड़की, जैसे मॉडर्न किस्म की शक्ल की लड़की थी, लेकिन कुरान असर दिखाता है बंदे पे, करता है, खा गई। होते होते कहती वो दिन था, आहिस्ता आहिस्ता शौहर ने मेरा स्काफ छुड़वाया, फिर उन्होंने मुझे इतना पीछे कर दिया और मैं उनको खुश करने के ख्याल में और यहाँ के कल्चर में, और ये सोचती रही अच्छा अभी शुरू के दिन है इनको खुश कर लूँ बाद में करूँ। अब वो जहनी मरीज़ क्या बन गई कि वो शौहर उसको ताने देता है कि तू कुरान पढ़ के आई हुई है, तू ऐसी है, तू वैसी है। इस तरह वो लड़की बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। मुझे पता चला कि वो मरीज़ हो गई हुई है। कुरान छोड़ के बंदा खुश नहीं रह सकता। आप दुनिया के लाखों कमाने लग जाएं, सारे ख़ानदान को खुश करें, नहीं रहेंगे। आपने दूसरों को एडजस्ट करवाना है, ना कि आपने एडजस्ट होना है। और लोगों को ये बात बता देना तो वो समझ जाते हैं। बात समर्थ अपनी बीवियों के लिए कहते हैं मुझे पता इसने मानना कोई नहीं, तो मैं अपना मगज़ नहीं मारता। दीन के मामले में कमिटमेंट, मैं फिर वही बात कहूँगी जितनी पीछे बातें हुई हैं, पहले वो सारी रखें घर वालों के साथ अच्छी, दीन की असल तस्वीर बने, कोई ये किताबी कीड़ा ना बन जाए कि मेहमान घर बैठे हैं और आप किताबें लेके बैठी पढ़ रही हैं, और ये ज़ुबान की बेकायदगियाँ तुम आगे करेंगे, इसको तो मैं भी जान के नहीं छेड़ रही कि पहले अंदर तो ठीक करें, ज़ुबानें तुम्हारी बहुत तेज़ हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता कब बोलना है, किससे बोलना है, क्या बात करनी है क्या नहीं, ये बात की बातें हैं। लेकिन अपने आप को इंशाअल्लाह ताला मजबूत करना है। फिर अगला अहदनामा, मैं अपने ज़मीर को तीन तरीक़ों से इस्तेमाल करूँगी। नंबर एक, कोई भलाई का काम करूँगी आज। दूसरी बात, बुराई को नहीं अपनाऊँगी, यानी कोई बुराई का काम सामने आएगा तो मैं उसको नहीं करूँगी। और तीसरा, अगर किसी ने तकलीफ़ पहुँचाई तो इसका इजहार नहीं करूँगी। दोहरा देती हूँ, कमिटमेंट जो ज़मीर के मुतल्लिक है हमारी, वो क्या है कि कोई नेकी का भलाई का काम आज ज़रूर करूँगी। अब ये भलाई क्या है, सोशल वर्क है। हाँ, उम्मत मुस्लिमा तो है ही, कुन तुम खैर उम्मतिन तामरून बिल मारूफ, तो तामरून बिल मारूफ में अमर बिल मारूफ है। कोई अच्छा काम, कोई इसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से भी नहीं होता, किसी को अच्छी नसीहत, कोई एडवाइस, बंदे को ना अपनी क्वालिटी का पता चलता है और ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है जब हम दूसरों को अच्छी बातें बताते हैं। और बुराई नहीं अपनाऊंगी, वन हानिल मुनकर, बुराई से रोकना है। और तीसरी बात है, अगर मुझे किसी ने तकलीफ़ दी तो मैं इजहार नहीं करूंगी। ये कैसे होगा? मसलन कोई प्रैक्टिकल सूरत इसकी देखें, कोई तकलीफ़ पहुंचाए, कौन तकलीफ़ पहुंचाते हैं अमूमन हमें, जिनसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है? मसलन जी, इधर से जी, आप बहन भाई, कोई मिसाल है, आपके बहन या भाई ने कोई तकलीफ़ पहुँचाई, किस किस्म की तकलीफ़ पहुँचाते हैं भाई बहन? जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता क्या कि सास की को बात बुरी लग गई, लग जाती है, अच्छी सोने जैसी सास की भी बातें बुरी लगेंगी, याद रखिए। और हीरे जैसी बहू है ना आप, फिर भी आपकी कोई बात बहू सास को बुरी लगेगी, मान लीजिए इसको, मेरी बातों से लोग दुखेंगे और मैं दूसरों की दुखूंगी। अब आपको तकलीफ़ हुई तो इजहार किससे नहीं करना? शौहर से नहीं करना? नहीं, उस सास से भी नहीं करना। मसला क्या है कि उस सास को भी नहीं एहसास दिलाना कि मैं आपकी इस बात से दुखी हुई हूँ, जिसको हमारे यहाँ इंग्लिश में कहते हैं किल विद काइंडनेस, नरमी की मार मारना जिसको आप कहते हैं। मैंने नहीं एहसास दिलाना कि मुझे ये आपकी बात बुरी लगी है, ये एक किस्म का टेस्ट है। बस हालात में एहसास दिलाने से फ़ायदा होता है, लेकिन आपने बहरहाल कोई एक बात ज़रूर ऐसी करनी है कि किसी की तकलीफ़ें बोलना नहीं। आज अगर आप इस बात को पल्लू से बांध लेना, मुझे इज्तमाई कामों में या इनफरादी ज़िंदगी के जो काम हैं, कोई भी तकलीफ़ आए मैंने बोलना नहीं है, शिकायत नहीं करनी, आप इसको अपने तौर पे ये कह सकती हैं, यकीन करें। सिर्फ एक दिन आप इस सोच के साथ अपने आप को बांधे, मैंने शिकायत नहीं करनी। वैसे तो इस पे हम आगे जाके अलग भी बात करेंगे जहाँ ज़ुबान की बातें आएंगी, लेकिन इस वक्त हम डेली प्लानर बना रहे हैं तो कर लेते हैं। तकलीफ़ पहुँचाई, इजहार नहीं करना। मसलन कोई तकलीफ़, सुबह उठते क्या होता है ज़रा बोले। अमूमन देखिए कि हम कितना बेलगाम बोलते हैं सुबह उठे जी। बच्चों से पहली शिकायत, उठते नहीं है सुबह। अब आप, बच्चा तो नहीं उठा, खैर आपकी कोशिश से उठ के चला गया, अब आप क्या करेंगी? गाड़ी में बैठी सुबह, आज तो बच्चों ने बड़ा ही सताया। फिर शाम को सास को मिलेंगी, अम्मी ये बच्चे बड़ा सताते हैं। फिर शाम को मियाँ साहब आए, आपके बच्चों ने तो मुझे सता दिया। कहती होंगी ऐसा कभी कभी, अब नहीं कहना। अंदर बड़ा करने के लिए पहले बर्तन बड़ा करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे तो खैर चले गए, अब उसके बाद अगली शिकायत किससे होती है? हस्बैंड से होती है। मसला अमूमन हस्बैंड से क्या शिकायत होती है? एक तो ये कि गीला तौलिया बेड पर डाल देते हैं, और ये तो हर एक को होगी। धोने वाले कपड़े कमरे में फेंक देते हैं, ये भी होती होगी। और क्या होती है भला? बाथरूम में बड़ा वक्त लगाते हैं, इश्तहार लेके आते हैं, फिर वो घर गंदा कर देते हैं, आप कह लें चीज़ें फैला देते हैं और वादा करके भूल जाते हैं जी। आप तो, आपको यही बड़ा गीला होगा कि सारे काम खुद कर देते हैं, मुझे करने ही नहीं देते, वक्त पर घर नहीं आते, मसरूफ़ बहुत रहते हैं, वक्त नहीं देते बच्चों को। अब आप लोग अपने साथ जिसको कहते हैं ना दुपट्टे में गिरा बांध लें, मैंने शिकवा नहीं करना, डोंट कंप्लेन, लिख लें। आप अपने पास आज के होमवर्क में एक छोटा सा रिमाइंडर बना के अपनी आंखों के सामने रखने के लिए लगा लें कि डोंट कंप्लेन, शिकायत नहीं करनी मैंने। देखिए, हम बाज़ दफ़ा एक बार को बार बार करके, एक चीज़ सबको समझ आ रही है, मिसाल देती हूँ, देखें बड़े लोग कहते हैं कि जिस चीज़ का थोड़ी देर बाद पता चल जाना है उसको बताने में जल्दी नहीं करते। ये मुझे ये जुमला हमारे वालिद हमें इस तरह, छोटे छोटे थे हम लोग तो बाद दफ़ा बच्चों को आदत होती है ना, मैं पहले बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगी, जैसे बाप को देख के ये घर, तो कभी कोई ऐसी बात जो घर में हुई हो तो बच्चे तो इंतज़ार कर रहे थे ना कोई नया बंदा उसको बताए, तो हम लोगों ने ज़रा कोशिश कर दी ना उनको बताने की, तो वो हमेशा हमें ये कहा करते थे जिस बात का पता चल जाना हो उसके बताने में जल्दी नहीं करते। ये हमारे लिए डांट थी, बहुत बड़ी डांट थी। और जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी छोटी सी बात भी चुभती है, फिर ख़ुद को कोसना, मैं क्यों कहा, मैंने क्यों बोली, मैं क्यों बोली। तो कभी भी ऐसी बातें जिसका अगले को खुद पता है, मिसाल है कि अगर एक चीज़ नहीं, आंखों से तो सबने देखी है ना, सबको दिख रही है, मिसाल देती हूँ लिफ्ट नहीं चल रही, सबको पता लिफ्ट नहीं चल रही, मिसाल है डोर नहीं खुला, सबको पता डोर नहीं खुला, डिस्कस क्यों करना, किससे बात कर, उससे बात कर, उसको क्या फ़ायदा, उसका किसको होगा। तो मैंने कंप्लेन नहीं करना, यकीन करें कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी हसीन बन जाएगी अगर सिर्फ आप कंप्लेन ना करने को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। मुश्किल बहुत होगा आपको ये अमल करना, वल्लाही, इसलिए कि कौम होने के नाते हम 90% टाइम शिकायतों में गुजारते हैं, हमारे तो महकमा शिकायात तक बने हुए हैं। और अगर आपको मैं इधर मैनेजमेंट वालों को किसी एक को ज़रा माइक दे दूँ ना कि ज़रा आप बताएं कि आपको स्टूडेंट से क्या है, तो मेरा हाल 101 कंप्लेंट्स होंगी, टीचर से पूछ लें उनको कंप्लेन होंगी, आपके साथियों को होंगी। तो ज़िंदगी में इस चीज़ को अपने आप के साथ रखें कि मैंने हत्तुल वसा नहीं बोला, खामोशी से लोगों को सिखाएं, बोल के क्या किया आपने, वो तो आपकी आंख का इशारा समझ के समझ जाएंगे कि हमने गलत किया है, ज़ुबान से बोलेंगे तो आप बल्कि मुजरिम बन जाएंगे उनकी नज़रों में। फिर उसके बाद अगली चीज़ कमिटमेंट की, और वो क्या है, जितना मुमकिन हो सका उतना अच्छा नज़र आने की कोशिश करूँगी। कैसे, नंबर एक हल्की आवाज़ में बात करूँगी, हुस्न सलूक से बात करूँगी, तलखी के साथ तनकीद नहीं करूँगी, और अपनी ज़ात के सिवा किसी को हुक्म नहीं दूंगी। मैं दोहरा देती हूँ, ये है अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों की नज़रों में खूबसूरत बनाने की टिप, जितना मुमकिन हो उतना अच्छा नज़र आने की कोशिश करूँगी। कैसे, हल्की आवाज़ में बात करूँ, ऊंची आवाज़ में बात करने लगे अच्छे लगते हैं, किसी एक को आप में से अच्छा लगता है तो चीखें आप पे, ऊंची भाँ भाँ करें नहीं अच्छे लगते ना, तो ये आपको आजमाना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। हल्की आवाज़ से मुराद नरम आवाज़, मीठी आवाज़, हुस्न सलूक से बात करना, मसलन हुस्न सलूक के कि किसी का तमाशा ना देखें कि वो गलती कर रहा है तो आप उसको कि देखा आपने किया, नहीं अच्छी बात है, अच्छे सलूक के साथ नरमी की बात कर लें, और तलखी के साथ तनकीद नहीं करनी, ज़रूरत पड़ जाती है कभी तनकीद करने की, और आप जितने लेवल पर ऊपर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन आपने अपने अंदाज में सख्ती, एक होता है ना बात सख्त होती है फिर दूसरे के अंदाज भी सख्त होता है, इन दोनों से रुकना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी ज़ात के सिवा किसी को हुक्म नहीं दूंगी, अब हुक्म नहीं दूंगी तो काम कैसे होंगे, अब इसको फ़र्क समझ लेते हैं। हुक्म देना क्या होता है, कमरा साफ करो, जूते सीधे रखो, चलो चाय बना के दो, ये क्या है, हुक्म देना। अब आप कहते हैं कि हुक्म तो देना कोई नहीं था, तो ये सारे काम कैसे होंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे, कैसे इसको बदलेंगे बच्चों के साथ या घर वालों के साथ जिसको भी है, बेटा बैग कहाँ रखते हैं, अब बताइए इस जुमले में बैग सही रखो और बैग कहाँ रखते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में, बात तो एक ही है, लेकिन आपने ऐसे लपेट लपाट के हुक्म दिया वो फौरन पकड़ लेगा। हाँ, इसी तरह दूसरी चीज़ों में भी आप देखें, जुमले जो होते हैं ना हमारे ये बहुत अहम होते हैं। किसी को ये कहना सफाई कर दो तो आप क्या कहें, क्या हाल है सफाई ना कर ले, तो अगला खुद ही कहे हाँ हाँ कर लेते हैं, आप बेटे मैं कर लेती हूँ। हाँ, इस तरह से। फिर इसी तरह अगली चीज़ क्या है, मैं जो भी प्रोग्राम बनाऊँगी आज के लिए अगर मैं उस पर अमल ना भी कर सकी फिर भी मैं अगले दिन का प्रोग्राम बनाऊँगी। एक बहुत बड़ा हम लोगों का मसला क्या होता है, बड़े शौक से डायरी खरीदते हैं थिंग्स टू डू लिखी, पता क्या चला कि वो आदि तो की नहीं, हमसे कौन सा अमल होने बनाते नहीं। आप रोज़ बनाएं और रोज़ ना काम करें उस पर, ना करें अमल फिर भी बनाएं, ठीक है, ये कमिटमेंट करें, रोज़ अपना प्रोग्राम बनाऊंगी, अमल ना भी हो सका फिर भी बनाऊंगी। अगला नुक्ता लिखिए, दो जरासीमों से ख़ुद को पाक करूंगी। नंबर एक, जल्दबाजी, اور دوسرا فیصلہ نہ کرنا. یہ دو بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ، یا تو ہم جلد باز ہوتے ہیں یا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، یا ڈیسیژن پاور نہ ہونا، یا فوراً جھٹ سے پوری بات بھی نہیں، بات لوگ سنتے ہیں جھٹ سے پوری آگے بول دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بات تو پوری سن لیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہنے لگی تھی. ہاں تو جلد بازی بھی بعض دفعہ بہت نقصان دیتی ہے. دو بس باتیں اور نوٹ کرتے ہیں، اتنا عہد نامہ بھی کافی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو نہ کرنے کا عہد کر لیں. ہاں اور وہ کیا کہ میں رات کے آخری پہر یعنی فجر سے پہلے جو مرضی ہے، باپ کی مرضی ہے، چند سیکنڈ تک زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوچوں گی. یعنی رات کا کوئی وقت، کوئی بھی وقت ایسا ہے، رات کو نہ کر سکے تو دن میں بھی کریں، یعنی دن رات کا کوئی وقت ایسا، پانچ چھ منٹ میں زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوچوں گی. اور آخری بات نیچر، یعنی قدرت نے جو خوبصورت چیزیں بنائی ہیں نا، میں چند منٹ تک شعور کے ساتھ اس سے لطف اندوز اٹھوں گی. کبھی پیلے پتوں کو دیکھ لیں، کبھی بادلوں کو دیکھ لیں، اور یہ وہ وقت ہونا چاہیے جو آپ کا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اس وقت میں آپ بالکل اپنے آپ کو رکھیں گے. اچھا تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کی کوششوں سے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی. یہ عہد نامہ لکھ کے ابھی لگا لیں اور پھر کہہ دیں یہ میری قبر میں بھی ڈال دینا. یہ ڈل گیا قبر میں تو ہو سکتا ہے منکر نکیر کو بھی آسانی ہوگی کہ کیا کیا عہد کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جتنا سمجھنا چاہے اتنا سمجھ سکتا ہے. جنید بغدادی ایک بزرگ تھے، کہا کرتے تھے تم ہر لمحے یہ سوچو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو اور شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو اور جہنم سے کتنے دور ہوئے ہو. تو ہماری ڈائریوں کا ہر صفحہ ہمیں بول بول کر ایک بات کی خبر دیتا ہے، اور وہ کیا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہر دن چلا گیا، کل جو تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا. تو جو قومیں اپنے وقت کا صحیح حساب رکھتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہترین ترقی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر کے اپنی زندگی میں سے اور حاصل کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کوئی سوال؟ ہاں جی، یہ بھی ان کا اچھا سوال ہے کہ گھر کے ہر فرد کو اگر ٹائم دینا چاہیں لیکن گھر کا جو فیملی ٹائم ہے اس میں ٹی وی چل رہا ہو یا میوزک لگا ہو، تو پھر آپ اس وقت ان کو کیسے ٹائم دیں؟ یہ مطلب ہے نا آپ کا. جی آپ دیکھ، یعنی آپ میوزک نہیں سننا چاہتی یا آپ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہتی، تو آپ ایک دن کسی اچھے موقع پہ جب سب بڑے اچھے موڈ میں ہوں، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں آپ لوگ کبھی بھی، تو یہ بات کر لیں، شیئر کر لیں کہ ہمیں کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے نا، اور اس وقت پہ ٹی وی بند ہو اور سب بیٹھ کے بات کریں، ملیں جلیں، اور ان سے ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، بیٹھنا چاہتی ہوں. اصل بات جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں نا، کوئی ایک لائن آف ایکشن سیدھی نہیں ہے، ایک سوچ لیں، سوچ مل جاتی ہے نا ہمیں نہیں، تو اس کے بعد آپ ہر بندے سے اپنے ٹرمز کو اس طرح سیٹل ڈاؤن کریں. مثلا آپ کچن میں امی کو ٹائم دے سکتے ہیں جب امی کا ٹائم ہے. مثال ہے گھر میں عورتیں ہیں نا، دو چار عورتیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کئی ہوتے ہیں، تو ان کو ٹائم دینے کا بیسٹ ٹائم ہے کچن میں آ جائیں، ساتھ کام کرنا شروع کر دیں، سبزی چھیل دیں، کوئی چائے بنا لی، چلے امی آپ بیٹھے میں چائے بناتی ہوں، آج ایسے ہوا، آج ادھر گئے، امی بیٹھے، ایسے بٹھا لیں پاس باتیں کرنے کے لیے، چلیں آؤ میں برتن دھوتی ہوں تم ادھر بیٹھ جاؤ، آپ اپنی نند کو بلا لیں، اپنی بہن کو بلا لیں. عورتوں کے ساتھ اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ باپ اور بھائی جو مرد ہوتے ہیں گھر کے، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس چلی جائیں، تھوڑا سا ان کی گفتگو میں شریک ہو جائیں، یعنی اگلے کے معمول کے اندر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈال لیں. اور ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوں، تو جو آپ آدھا گھنٹہ دینے والی تھی وہ آپ پانچ منٹ میں دے کے فارغ ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے پوچھا. اور یقین کریں کہ آپ صرف لوگوں کو ایک یہ احساس دلانا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، آپ میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں، صرف یہ نازک نرم سے جملے بولیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ نہیں کچھ کرائیں گے. صرف ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہمارا بیہیویئر جو ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو ہمارے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں وہ آپ کی پوری خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں. مائیں کتنی خدمت کرتی ہیں بیٹیوں کی، माँ को चाहती है कि मेरी बेटी रोटी बना के मुझे खिलाए, बहुत थोड़ा होता है कभी बीमार हो, कोई ऐसे आम हालात ना हो, माएँ तो हमेशा खिदमत करके खुश होती हैं, लेकिन असल वजह है कि हम उनको फीलिंग दें। तो ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम वाकई इन सारी बातों पे कायम रहें। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।